قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ مریم کی ان آیات کی تفسیر ہم یعنی خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، تو جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو نصیحتیں کری یا ابدی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، تو ان کو سن کر کے اس نے جواب کیا دیا. اس نے کہا قالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اس کے تحت خلاصہ تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، خلاصہ تفسیر ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے نا، تو اس میں لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام نصائح نصیحت کی جمع ہے. نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کی بات کو، کسی کی خیر خواہی میں اگر آپ کوئی بات کریں تو اسی کو نصیحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو کہا کہ باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم. راغب انت عن آلہتی، ٹھیک ہے، تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو، ورنہ تو رغبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ان کی طرف مائل ہوئے ہوئے ہو، لیکن ان کا لفظ استعمال کرنی ہے بعد میں، تو ان کا مطلب ہوتا ہے فرام، تو یعنی ان کے خلاف تم پھرے ہوئے ہو اور اس لیے مجھ کو بھی منع کرتے ہو. یاد رکھو اگر تم ان بتوں کی مذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے باز نہ آئے، ٹھیک ہے، باز نہیں آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کے، اس کو سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو سنگسار کر دے رہا میں پتھر مار دے رہا، بس تم اس سے باز آ جاؤ اور ہمیش ہمیش کے لیے مجھ کو کہنے سننے سے برکنار رہو. یعنی یہ جو کہا نا وہ جرنی ملیا، تو وہ جرنی یعنی تم الگ ہو جاؤ، کسی کام سے الگ ہو جانے کو وہ جرنی کہیں گے، چھوڑ دینے کو، ہجر کہتے ہیں دور ہو جانا، تو چھوڑ دو. ملین، ملین کا مطلب ہوتا ہے ایک لمبی مدت، ٹھیک ہے، ایک لمبی پرولونگڈ ٹائم پیریڈ، اس کو ملین کہتے ہیں. تو حضرت نے یہاں پہ اس کا اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ تم الگ ہو جاؤ، اس یعنی برکنار، برکنار کا مطلب ہوتا ہے کہ کنارے پر ہو جاؤ، یعنی سائڈ پر ہو جاؤ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہتر میرا سلام لو، سلام علیک میرا سلام لو، اب تم سے کہنا سننا بے سود ہے. اب ظاہر ہے یہ ایک وقت کی کانورسیشن نہیں ہوگی بلکہ یہ چل رہی ہوگی کافی عرصے سے، کیونکہ نبی جو ہے نا وہ ایک دفعہ بات کر کے پھر آگے سے اگر نفی میں جواب مل جائے تو ہمت نہیں ہارتے بلکہ مستقل لگے رہتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا کہ ابو جہل جو کہ اتنا جانی دشمن تھا اور اتنی بری طریقے سے پیش آتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام اس کے پاس جاتے رہے تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3000 مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے، 3000 مرتبہ، ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا تھا، حتیٰ کہ کبھی بجلی کڑکنا شروع ہو گئی، بادل گرجنا شروع ہو گئے تو ان سے دلوں کے اوپر ایک روب پیدا ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اس روب کی وجہ سے، تو نبی علیہ السلام پہنچ گئے ابو جہل کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے، اس نے آ کر کے کھولا تو کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بدبخت نے اس موقع کے اوپر بھی دروازے کو بند کر دیا نبی علیہ السلام کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر بھی پہنچتے رہے اس کے پاس اس کو دعوت دینے کے لیے تاکہ وہ بچ جائے جہنم سے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور باپ کے درمیان اور بھی اس طرح کی بات چیتیں چلتی رہی ہوں گی، लेकिन ये जो थी फाइनल कॉन्वर्सेशन थी, क्योंकि नबी थे तो नबियों को फिर बता दिया जाता था कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके बाद कहने का फायदा नहीं है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बता दिया था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने उस दिन के बाद फिर तबलीग छोड़ दी और कश्ती बनाने के अंदर लग गए। लेकिन उससे पहले जब तक अल्लाह ताला ने नहीं बताया था, तो 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। बहरहाल यहाँ पर फिर अब वो फाइनल कंक्लूजन हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा मेरा सलाम लो, अब तुमसे कहना सुनना बेसूद है, अब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मगफिरत की इस तरह दरख्वास्त करूंगा कि तुमको हिदायत करे जिस पर मगफिरत मुरतब होती है। यानी ये जो कहा ना अस्तग़फिरु लका रब्बी, कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए इस्तग़फार करूंगा, तो इस्तग़फार करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे, राइट। इस्तग़फार का मतलब होता है माफी मांगना, तो एक होता है अपनी तरफ अपनी अपने लिए माफी मांगना, अपने लिए इस्तग़फार करना, और एक होता है किसी दूसरे के लिए इस्तग़फार करना कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे। तो दोनों जायज हैं, अपने लिए इस्तग़फार करना और दूसरे के लिए। जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, जब बेटों ने फाइनली आकर के माफी मांगी ना याकूब अलैहिस्सलाम से और कहा कि आप हमारे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था अपने बेटों को कि तुमने जो इतना अरसा मेरे साथ सब कुछ किया ना, कि यूसुफ को तुमने गायब कर दिया और मुझे इतनी इतनी तकलीफ हुई और दुख पहुंचाया, तो सौफा अस्तग़फिर, मैं अनकरीब तुम्हारे लिए इस्तग़फार करूंगा। यानी तहज्जुद के वक्त में उठूंगा, मुफस्सरीन ने यही लिखा है कि तहज्जुद के वक्त में उठ करके मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से हम भी वालदैन के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, ठीक है, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो दुनिया से चले गए हों, ठीक है। तो इस तरीके से किसी के लिए भी गुनाहों की माफी की दुआ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं और मांगनी चाहिए भी। तो यहाँ पर इन्होंने भी इसी तरीके से कहा कि मैं गुनाहों की आपके गुनाहों की माफी मांगूंगा, लेकिन यहाँ पर फर्क यह था कि इनका जो बाप था वो मुशरिक था, ठीक है, शिर्क करने वाला था, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया है, ऐलान फरमा दिया है कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसको जिस गुनाह को माफ करना चाहूं तो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन शिर्क को नहीं माफ करूंगा। तो ये बात जो है ना, एक तो तफसीर फिर इसकी क्या बनती है कि यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर ऐसी बात क्यों कही कि मैं आपके शिर्क की माफी मांगूंगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपके शिर्क को माफ कर दे और आपको जन्नत में दाखिल कर दे, यानी ठीक है। तो इसकी दो तफसीरें बनती हैं, एक तो जो हजरत ने यहाँ पे लिखी है, यानी एक तो ये कि उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात नहीं पता थी कि मुशरिक के गुनाह की माफी की दुआ नहीं करनी है, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म में ये नहीं था, ठीक है। अल्लाह ताला अपने नबियों को इल्म देते हैं विद टाइम, पहले इल्म नहीं होता किसी बात का, तो गलती हो गई क्योंकि इल्म नहीं था ना, बाद में इल्म अता फरमा दिया, तो नबी ने माफी मांग ली इस बात के ऊपर जो उससे गलती हो गई, ठीक है। कोई इल्म और इरादे से अल्लाह ताला की नाफरमानी को थोड़ी कर रहे थे, ठीक है, वो तो अपने खैर ख्वाही में और यानी रहमत की वजह से इस तरह की बात कर रहे थे कि मैं आपके शिर्क की भी माफी की दुआ करूंगा अल्लाह ताला से। लेकिन दूसरी तफसीर जो है वो ये है कि उन्होंने जो ये कहा ना कि मैं आपके गुनाह से माफी की दुआ करूंगा, इसका मतलब असल में ये था उनका कि मैं आपके लिए हिदायत की दुआ करूंगा, ठीक है, कि अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक अता फरमा दे, और तौबा जब आप कर लेंगे तो आपका शिर्क का गुनाह भी माफ हो जाएगा ऑफकोर्स। यानी अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि तुमने सारी जिंदगी जो है वो मेरे साथ शरीक किया, बुतों को शरीक किया, बेजान चीजों को शरीक किया, अब क्या करने आए हो मेरे पास, अब किस मुंह से तौबा करने आए हो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करता। नहीं, अल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि सारी जिंदगी शिर्क जैसा कबीरा तरीन गुनाह करने वाले को भी अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं उसकी तौबा को और उसको माफ कर देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही मतलब उनका यही था कि अल्लाह ताला तुमको हिदायत करे और हिदायत के ऊपर मग़फ़िरत मुरतब हो जाती है, तो मैं हिदायत की दुआ करूंगा। बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। इन्नहु काना बी हफिया, ठीक है, तो हफिया का मतलब मेहरबान होना, ग्रेशियस, मेहरबान। तो जो 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 नबी होते हैं और इवन जो वली होते हैं, यानी अल्लाह ताला के पक्के दोस्त होते हैं ना, जो विलायत कुबरा भी जिसको कहते हैं, यानी विलायत के ऊंचे दर्जे पर फाइज लोग, ठीक है, तो उनको जो है ना वो अल्लाह ताला के साथ अपनी दोस्ती का पता होता है, अल्लाह ताला की मेहरबानियों का उनके साथ जो खसूसी मेहरबानियां होती हैं, क्योंकि दोस्त का ये मामला होता है कि जब जब कोई छोटा किसी बड़े के साथ दोस्ती करता है तो अब बड़ा जो होता है वो तो फिर उसके ऊपर अपने तोहफों की बारिश कर देता है, है ना। आप किसी बादशाह सलामत से जाकर के दोस्ती लगा लें तो क्या ख्याल है, बादशाह सलामत फिर उस तरह का मामला करेंगे जैसे कि हम किसी गली गली के लड़के से दोस्ती करें, किसी मोहल्ले की लड़की से दोस्ती करें, तो बस उसके साथ तो ऐसे ही होगा, वहां भी कभी थोड़ी बातचीत कर ली और बस खत्म। नहीं, किसी बादशाह से या किसी मलका से जाकर के दोस्ती करेंगे तो मलका बादशाह इन्होंने तो फिर आपके ऊपर इनामात की बारिश करनी है ना, फिर तो इन्होंने आपको खूब मजे मजे की चीजें देनी है। तो जब मजे मजे की चीजें आपको किसी से मिलेंगी, ठीक है, तो फिर आपको क्या पता नहीं चल जाएगा कि हाँ वाकई मेरी तो उसके साथ दोस्ती हो गई है, उसने भी मुझे अपना दोस्त बना दिया है, है ना। तो इसी वजह से जो औलिया होते हैं, और जाहिर है नबी सिर्फ बातें बताने वाले को नबी नहीं कहते, यहाँ भी नबा यंबा, नबी का लफ्ज है वो नबा से निकला, यानी खबरें देने वाला, तो नबी का काम ये कोई थोड़ी होता है कि बस खबरें दे दें, बल्कि नबी पहले अल्लाह ताला का वली होता है और फिर उसको अल्लाह ताला खबरें देने का काम भी लगा देते हैं, ठीक है। तो नबी तो सबसे बड़ा वली होता है और बाकी जो गैर नबी होते हैं वो भी बड़े बड़े वली होते हैं, तो उनको जब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें मिलती हैं ना, रूहानी नेमतें, तो फिर उनको पक्का यकीन हो जाता है कि वाकई अल्लाह ने हमें दोस्त बना लिया है, ठीक है। अच्छा, बस इस दोस्ती में फर्क ये होता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं और अल्लाह ताला बेनियाज हैं, ये बात भी नबी को पता होती है, वली को भी और नबी, तो यानी इनको ये बात पता होती है कि अल्लाह ताला बेशक उन्होंने हमें दोस्त बना लिया है लेकिन अल्लाह ताला बेनियाज हैं और वो इतने बड़े हैं कि मुझे उनकी दोस्ती की जरूरत है, उनको मेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है, उनको मेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है, वो तो उनका एहसान है कि उन्होंने मुझे दोस्त बना लिया। तो इस वजह से ना ये हर वक्त डरते भी रहते हैं कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि अल्लाह ताला मुझे अपनी दोस्ती से महरूम कर दे, ठीक है। तो दोनों कैफियात चलती हैं इनकी, ठीक है, जो वली होते हैं ना अल्लाह के, उनकी दोनों कैफियात चलती हैं, एक तो उनको यकीन होता है कि वाकई अल्लाह ने उनको दोस्त बना लिया है, यकीन होता है इस बात का, लेकिन इस यकीन पर वो इतराते नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि हम जैसा कोई बंदा हो, बादशाह सलामत का दोस्ती हो जाए ना, तो अब हम सारी दुनिया में ढंडोरा भी पीटेंगे कि हाँ बादशाह सलामत के साथ मेरी दोस्ती हो गई है, और हम उस दोस्ती का नाजायज इस्तेमाल भी करेंगे लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, लोगों के ऊपर जो है वो यानी स्टाइल मारने के लिए कि हाँ मेरी तो बादशाह से दोस्ती है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, बल्कि ये डरते रहते हैं कि बादशाह ने दोस्त बनाया है तो बादशाह फिर दोस्ती से हटा भी सकते हैं ना। तो ये दोनों कैफियात चलती हैं कि साथ साथ, इस वजह से कोई मसला नहीं होता। तो इन्होंने फिर मैंने अपने बाप से भी कहा कि भाई वो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, इसलिए मैं उसी से अर्ज करूंगा, जिसका कबूल फरमाना या ना फरमाना दोनों मुख्तलिफ एतबार से रहमत और मेहरबानी है, यानी मैं बात करूंगा, मैं अपने दोस्त से बात करूंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसका उसने अगर कबूल फरमा लिया, ये तो खैर हजरत ने तफसीरन इस बात को लिखा है कि भाई अब वो कबूल करेंगे तो ये भी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर, और अगर वो कबूल नहीं करेंगे मेरी बात को ना, भी मैं अपने दोस्त से नाराज नहीं होऊंगा, ठीक कि मेरी बात क्यों नहीं कबूल करी, क्योंकि ये जो दोस्त है ना, ये कोई दुनियावी दोस्त नहीं है, ये कोई इंसान दोस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह ताला की दोस्ती में ये होता है कि अल्लाह ताला अगर मेरी बात को मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र अदा करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला अगर मेरी बात को नहीं मान रहे हैं ना, तो भी मैं नाराज नहीं होऊंगा और मैं शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये समझूंगा कि चूंकि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहित है, हर चीज को अल्लाह ताला जानते हैं, इस वजह से मेरी किसी बात को ना मानना भी जो है ना, वो भी मेरे लिए खैर ही है, उसमें भी हिकमत है अल्लाह ताला की, उसमें भी खैर ही है, ठीक है। तो मानना ना मानना दोनों एतबार से ये रहमत और मेहरबानी होती है। जब भी हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, जैसे भी पिछले 2 हफ्ते पहले बयान में भी आपके सामने कुछ बातें एक हजरत की किताब से पढ़ी थी, कि हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जब अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर लेता है और उसकी कबूलियत जाहिर हो जाती है हमारे सामने, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और जब अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं करता है, यानी कि उसकी कबूलियत जाहिर नहीं करता हमारे सामने, बल्कि उसको जन्नत का जखीरा बना देता है या उसके बदले कोई दूसरी मुसीबत डाल देता है, लेकिन दुआ की कबूलियत जाहिर नहीं होती हमारे सामने, तो उस वक्त हम अल्लाह ताला का 10 मरतबा शुक्रिया अदा करते हैं, 10 मरतबा। हमारी बात पूरी हो जाए तो 1 मरतबा शुक्र अदा करते हैं, और अगर पूरी ना हो तो 10 मरतबा शुक्र अदा करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी बात पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि परवरदिगार की बात पूरी होगी, और जिसको परवरदिगार से मोहब्बत हो तो वो अपनी बात पूरी होने के बजाय परवरदिगार की बात पूरी होने के ऊपर ज्यादा खुश होगा, है ना? इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, यही तो मोहब्बत का तकाजा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो उसी बात का देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दिया है कि कबूल फरमाना या ना फरमाना दोनों मुख्तलिफ एतबार से रहमत और मेहरबानी ही है। और तुम और हमारे हम मजहब जब मेरी हर बात को भी नहीं मानते तो फिर तुम में रहना बेफजूल है, इसलिए मैं तुम लोगों से और जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत कर रहे हो उनसे बदनन भी किनारा करता हूँ। फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाही, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इतने अरसे मेहनत कर ली, तुम्हें बुलाया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और हत्ता कि तुमने मुझे आग में डालने का भी ये फेल कर लिया, तो अब जो है ना वो मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है। तो ये नबी थे और इनका जाना भी अल्लाह के हुक्म से ही था, कोई नबी जो है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर हिजरत नहीं करता, ना हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत करी, ना किसी और ने हिजरत करी। यूनुस अलैहिस्सलाम एक वाहिद नबी है कि जिनसे ये गलती हो गई थी कि उन्होंने इंतजार नहीं किया, बस कि अल्लाह का हुक्म आएगा तो मैं छोड़ के जाऊंगा, इंतजार किए बगैर वो कुछ ऐसी चीजें उन्होंने सोची जिसकी वजह से फिर वो छोड़ करके चले गए, और उसका फिर उनके साथ ये मामला हुआ कि उनको मछली के पेट में अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, ठीक है। तो उन्होंने कोई गुनाह का काम नहीं किया था, उनसे इज्तिहादी गलती ऐसी वाली हो गई थी कि अल्लाह ताला ने उसको फिर उनके सबब बना लिया एक हमारी इसलाह के लिए, ठीक है, कि भाई तुम मछली के पेट में जब जाओ ना तो फिर आयते करीमा पढ़ना, तो फिर मैं तुम्हें मछली के पेटों से आजाद करा दूंगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें एक सबक दे दिया, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो यहाँ से छोड़ करके हिजरत करके जा रहे थे, ये अल्लाह के हुक्म से ही जा रहे थे, लेकिन फिर भी इंसान बात करता है ना जरा, यानी अपेरेंटली एक 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 इसको कहते हैं कि हुक्म तो अल्लाह का है, लेकिन उसको आगे किसी अंदाज में बयान कर देता है कि हाँ भाई तुमने तो मेरी बात मानी नहीं है तो इस वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने खुद फैसला कर लिया है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बल्कि मतलब इसका ये होता है कि नहीं, अल्लाह का हुक्म आ गया था तो, लेकिन वजह क्या बनी अल्लाह के हुक्म आने की? वो वजह ये थी कि तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे थे, इस तरह से कह करके फिर ये वहां से चले गए। इराक में ये रहते थे पहले, और इराक से उन्होंने हिजरत करी शाम की तरफ, जो कि इराक से मगरिब की तरफ का इलाके को कहते हैं। अच्छा, जैसा कलबन पहले ही मैं तुमसे बरकिनार हूं, यानी यहां रहता भी नहीं, यानी इसका मतलब यानी ये जो मैं अब यहां से छोड़ करके जा रहा हूँ ना, तो अब तो मैं बदनन छोड़ करके जा रहा हूँ, कलबन तो मैं पहले ही तुम लोगों से अलग था, यानी चूंकि ये लोग काफिर थे, चाहे बाप हो चाहे दूसरे लोग हो वहां के रहने वाले, चूंकि काफिर थे तो इस वजह से मोमिन काफिर के साथ कभी भी कलबी मोहब्बत नहीं कर सकता। एक मोमिन एक काफिर के साथ कभी भी कलबी मोहब्बत नहीं कर सकता, दिली मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया है, ठीक है, कि इन काफिरों को तो वली दोस्त मत बनाना। तो कलबन तो पहले मैं तुमसे साइड पे हुआ हुआ था, अब मैं बदनन भी तुमसे साइड पे होता हूँ, यानी छोड़ के जाता हूँ। अच्छा, और इत्मीनान से अलाहिदा होकर अपने रब की इबादत करूंगा। अब यहाँ पर एक इश्काल पैदा होता है कि जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से अगर मोहब्बत नहीं करते थे तो फिर उन्होंने इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे फिर अपने बाप की, इतनी फिक्र क्यों कर रहे थे, और जो है वो इतने अच्छे से या अबती इस तरीके से बात क्यों कर रहे थे बाप से। भाई जाहिर है कुछ मोहब्बत थी, कुछ कुछ फिक्र थी, तो तभी तो कर रहे थे ये सारी मेहनतें अपने बाप के ऊपर। अगर मोहब्बत ना होती तो बाप और बाकी लोगों में कोई फर्क ही ना होता, बाकी लोगों को भी जिस तरह से तब्दील करते उसी तरह से बाप को भी तब्दील कर रहे होते, कोई फर्क ना होता, लेकिन बाप के साथ कुछ एक्स्ट्रा अफेक्शन थी, ठीक है ना, जब भी तो इतना आगे जा करके जो है वो बाप के साथ बातें करेंगी, ठीक है, तो क्या ये कलबी मोहब्बत नहीं थी, क्या ये कलबी मोहब्बत नहीं थी, तो इसका क्या जवाब है अगर आपसे हम पूछें कि बाप से इतनी जो एक अफेक्शन थी ना, तो फिर कलबी मोहब्बत में और इस अफेक्शन में फर्क क्या है फिर, कि कलबी मोहब्बत नहीं थी अफेक्शन थी, फर्क क्या है फिर इन दोनों चीजों में, ये अगर आप मुझे बता दें। कलबी तौर पर बाप से अलग थे लेकिन फिक्र बहुत ज्यादा थी बाप की, तो भाई फिक्र तो फिर दिल की एक कैफियत ही की वजह से पैदा होती है ना, फिर फर्क क्या है, कलबी मोहब्बत कोई अलग चीज होती है और फिक्र कोई अलग चीज होती है। चले फिक्र तो फिर भी हमें चले समझ में आती है बात, ठीक है, कि भाई वो दिल में एक किसी के लिए कुछ 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 यानी एक्स्ट्रा फीलिंग्स होती है किसी के लिए, तो उसके लिए फिर फिगर पैदा होती है, तो फिर कलबी मोहब्बत किस चीज का नाम है, व्हाट इज कलबी मोहब्बत, जिससे के मना किया गया है कि काफिर के साथ कलबी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारा बाप हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारा अपना अपना बेटा क्यों ना हो, चाहे अपना बेटा क्यों ना हो, कलबी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। कलबी मोहब्बत चीज क्या है, बार बार मिलने की ख्वाहिश होना कलबी मोहब्बत है, ये आपने अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि पहले इस टॉपिक पे जो बात हुई है तो उसमें यही यही यानी कलबी मोहब्बत की डिस्टिंग्विशिंग फीचर या उसकी पहचान वो यही बयान करी थी कि कलबी मोहब्बत का मतलब ये होता है कि बहाने बहाने से मुलाकात करना या मुलाकात करने की कोशिश करना, और अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो कम से कम बात करने की कोशिश करना बहाने बहाने से, ठीक है, जैसे पुराने जमाने में फोन वोन तो नहीं होते थे, तो इस वजह से मुलाकात होने पर ही बात होती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो मुलाकात किए बगैर भी आप बात कर सकते हैं फोन्स के ऊपर, ठीक है, चाहे फोन जिस भी शक्ल की चीज हो, लेकिन तो हाँ दिन में मुलाकात का शौक पैदा होना या कम से कम बात का बार बार शौक पैदा होना, ये कलबी मोहब्बत की अलामत है, लेकिन ये तो अलामत है, ठीक है, ये इससे पता चलता है कि किसी के साथ कलबी, सही है और बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, लेकिन कल्बी मोहब्बत की तारीफ तो नहीं हुई ना, ये तो अलामत होती है कल्बी मोहब्बत की, कि बार बार मुलाकात का बहाना ढूंढता है, शौक होता है। लेकिन अगर हम तारीफ को जरा अलग करें, तारीफ अलग चीज होती है, अलामत अलग चीज होती है, तो तारीफ क्या होगी? मोहब्बत की तारीफ ही बस कल्बी मोहब्बत और मोहब्बत एक ही बात है बस, वो तो कल्बी का लफ्ज लगा देते हैं जरा और उसको रीइन्फोर्स करने के लिए ना, वरना मोहब्बत तो कल्ब से ही होती है। तो कल्बी मोहब्बत और दिमागी मोहब्बत ये कोई अलग अलग चीजों से थोड़ी है कि एक चीज होती है दिमागी मोहब्बत, एक चीज होती है कल्बी मोहब्बत। मोहब्बत तो कल्बी ही होती है। तो इस तरह से चले हम आपके लिए आसान कर देते हैं कि कल्बी का लफ्ज हटा दें, बस सीधे सीधे मोहब्बत का, मोहब्बत की डेफिनेशन क्या होती है, उसके जायज नाजायज सब माने। ठीक है, मोहब्बत जो होती है ना वो ये होती है कि जिसमें आप बंदे की जायज नाजायज जो है वो सब मानना शुरू हो जाए। जैसे कि पिछले दिनों जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, रगबत, तलब, फिर मोहब्बत और फिर इबादत। ठीक है, तो मोहब्बत भी जो है ना वो अगरचे के इबादत से एक दर्जा कम चीज होती है, इबादत में ये होता है कि हर चीज मानता है बंदा, हर चीज, ठीक है ना, वो उल्टा लटकने को भी कह देंगे ना तो आप उल्टा लटक जाएंगे। हालांकि उल्टा लटकना कोई ऐसी नाजायज चीज तो नहीं है। हाँ ये है कि देखने वाले को जरा अजीब सा लगेगा, कभी उल्टा कैसे लटक गए भाई, भाई भाई साहब आराम से सीधे सीधे बैठे हुए एकदम से उल्टा लटकना, तो कोई हराम नहीं उल्टा लटकना, लेकिन एक अजीब सी बात है उल्टा लटक गया बंदा बैठे बैठे। लेकिन इबादत की दर्जे पे जब कोई पहुंच जाता है ना, फिर तो यानी कोई चीज अजीब सी हो ना उसको भी मान लेता। लेकिन मोहब्बत में ऐसा नहीं होता, मोहब्बत एक दर्जा कम चीज होती है। लेकिन मोहब्बत भी जो होती है ना वो भी उसमें भी अतात शामिल होती है, अच्छी खासी अतात शामिल होती है। ठीक है, हाँ भाई हर चीज की अतात शामिल नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि अभी इबादत के लेवल पे तो नहीं पहुंचा है ना, अभी तो एक दर्जा कम है। लेकिन मोहब्बत में भी अच्छी खासी अतात शामिल, जितनी जैसे समझ लें कि आप अपनी छोटी छोटी औलाद है, ठीक है ना, अब वो छोटी औलाद जो है वो यानी कोई बहुत नुकसान वाली चीज मांगेगी तो वो तो आप नहीं मानेंगी उसकी। ठीक है, लेकिन जितना बन पड़ता है आपसे उतना तो मानेंगी ना, अपने बच्चे की जितना बन पड़ता है ना, यानी यू विल गो आउट ऑफ योर वे टू फुलफिल देयर डिजायर्स, है ना, तो इसको मोहब्बत कहते हैं। आप अपने बच्चे की जो है वो इबादत तो नहीं कर रही ना, मोहब्बत कर रही है उसके साथ, तो बस आउट ऑफ द वे जाकर के उसकी बात को पूरा करना ना। ठीक है, तो ये जो कैफियत है ना मोहब्बत वाली कैफियत, कि किसी के आउट ऑफ द वे यानी इतना उसके साथ ताल्लुक हो जाए कि उसकी बातें मानना शुरू हो जाए, आउट ऑफ द वे जाकर के, ये काफिर के साथ मनाए। ठीक है, ये काफिर के साथ मनाए, मोमिन के साथ ये आप कर सकते हैं कि आउट ऑफ द वे जाकर के उसके लिए, यानी देखिए जब आप किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के यानी मुश्किल में मुब्तला होकर के जब कोई काम करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आपकी मोहब्बत उससे बढ़ती है और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना, काफिर के साथ इस रिस्क की इजाजत नहीं है, मोमिन के साथ इस रिस्क की इजाजत है। ठीक है, क्योंकि मोमिन के साथ मोहब्बत का बढ़ना ये कोई नुकसानदेह बात नहीं है, इसमें ये रिस्क नहीं है कि मोमिन जो है ना वो फिर आपको कुफर की तरफ ले जाएगा। भाई मोमिन तो खुद मोमिन है, वो आपको कुफर की तरफ नहीं लेके जाएगा। ये नहीं होगा कि आपके साथ मोमिन की मोहब्बत बढ़ी और कल वो ना फिर इस बढ़ी हुई मोहब्बत को इस्तेमाल करके आपसे कुफर का काम करवा लेगा, नहीं, मोमिन तो मोमिन होता है, ईमान वाला है ना। ठीक है, काफिर के साथ अगर आप ये काम करेंगे ना, आउट ऑफ द वे जा करके उसकी बातों को पूरा करना, ठीक है, तो काफिर तो फिर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो फिर आपको आपसे कुफर वाला काम करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस वजह से काफिर के साथ आउट ऑफ द वे जा करके अताद करना ये मना कर दिया। ठीक है, ये मैं इसलिए इस वजह से आपको ये बात समझा रहा हूं क्योंकि ये जो आपने कहा ना जायज नाजायज में मानना, भाई ये तो मोमिन के साथ, यानी ये तो हर एक के साथ मना है, आप किसी की भी नाजायज बात नहीं मान सकते, किसी की भी नाजायज बात नहीं मान सकते, है ना। लाता आता मखलूक फी मासियत खालिक, किसी की भी नाजायज बात नहीं मान सकते, तो फिर काफिर की ये आप नाजायज बात नहीं मान सकते, तो ये कौन सी नई बात है, ये तो हर एक के साथ यही उसूल चलता है, किसी की नाजायज बात नहीं मान सकते, ठीक है ना। इस वजह से इस बात को समझाया कि काफिर के साथ कल्बी मोहब्बत मना है, क्योंकि कल्बी मोहब्बत जो है ना, ये नहीं कि आप नाजायज बात मानना शुरू हो जाए, वो तो हर एक ही मना है। तो फिर कल्बी मोहब्बत का मतलब क्या होगा कि जैसे आउट ऑफ द वे जा करके, नॉर्मल से हट करके जायज बात मान रहे हैं आप, जैसे उल्टा लटकना, ये मिसाल मैं तो मेरे जहन में और कोई मिसाल नहीं आ रही, ये उल्टा लटकना जायज है लेकिन आउट ऑफ द वे है, नॉर्मल से हट करके, ठीक है ना। आप किसी के कहने के ऊपर उल्टी लटक जाए, फिर उसके बाद वो बंदा कहेगा हाँ यार ये तो वाकई दीवाना हो चुका है मेरे ऊपर, है ना, ये तो उल्टी भी लटक जाती है मेरे कहने के ऊपर, तो अब वो कहेगा अच्छा कल जो है ना मैं ऐसा करती हूँ कि अब कल मैं इनसे कहूंगी कि तुम छत पर से छलांग मार दो, ठीक है, आज तो उल्टे लटकने पे तैयार हो गई है ना ये, कल मैं उनको छत पर से छलांग मारने के लिए कहूंगी, देखो ये वो भी कर लेगी लगता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कल्बी मोहब्बत, और कल्बी मोहब्बत को जो गलत बंदा होता है ना वो अब्यूज करता है फिर उसके साथ, ठीक है, अच्छा बंदा इसको अब्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो माँ बाप के साथ, और चाहे वो काफिर हो, फिक्र होना एक अलग चीज होती है, फिक्र जो होती है ना ये आपको एक एक एक, एक तो ये कि दिल के अंदर एक तभी मोहब्बत है, ये तभी मोहब्बत जो होती है ना ये अकली मोहब्बत होती है, अकली, कि आपको किसी के लिए फिक्र हो रही है, ठीक है, कि वो बंदा जो है वो यानी उसके मेरे ऊपर इतने एहसानात हैं और मेरा करीबी रिश्तेदार है और मुझे उनके साथ एक अफेक्शन भी है, एक उनके साथ एक ताल्लुक है, तो अब वो कैसे वो जहन्नुम में चले जाएंगे, वो उनको नुकसान हो जाएगा, तो मैं उनको नुकसान से बचाने की कोशिश करता रहूँ, ठीक है, उनके लिए फिक्र करता रहूँ, उनके लिए जो है वो हिदायत की दुआएं मांगता रहूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनका मेरे साथ एक खास ताल्लुक है, ठीक है। तो ये मोहब्बत का एक कम दर्जा है, यानी है ये भी मोहब्बत लेकिन ये मोहब्बत का एक कम दर्जा है, इसको आप तभी मोहब्बत का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, एक नेचुरल मोहब्बत का नाम, फिक्र का नाम दे सकते हैं इसको आप, एक अफेक्शन का नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज तो काफिर के साथ भी है, ये चीज काफिर के साथ भी, ठीक है, और खुसूसन जब वो काफिर कोई करीबी रिश्तेदार हो तो ये तो उनके साथ भी है, लेकिन इसको इस दर्जे से आगे बढ़ाना कि आउट ऑफ द वे जाकर के आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उससे हमें मना कर दिया गया है, ठीक है। तो कह यानी समझने की बात यह है कि मोहब्बत है ना ये कोई एक वन और जीरो का नाम नहीं है कि ये है या नहीं है, बल्कि मोहब्बत के बहुत बहुत इसके दर्जात है ना, यानी तभी मोहब्बत एक दर्जा है, फिर आउट ऑफ द ये जिसको कल्बी मोहब्बत कहते हैं ये एक दर्जा है, फिर ये मोहब्बत बढ़ती रहे, है ना, तो अब बढ़ करके कि बिलाखिर इबादत बन जाती है, तो गोया कि ये पूरा एक चौड़ा स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, मोहब्बत में। ये भी तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों की अल्लाह से मोहब्बत के लिए शदीद का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी ये जो ईमान वाले होते हैं ना ये अल्लाह ताला से तभी मोहब्बत नहीं करते, ये अल्लाह ताला से इंटेलेक्चुअल अफेक्शन नहीं है इनको बस अल्लाह ताला से, बल्कि ये अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो भाई उसका मतलब क्या हुआ कि मोहब्बत के गैर शदीद भी मोहब्बत होती है, शदीद भी मोहब्बत होती है और मीडियोकर भी मोहब्बत होती है, जो हमारे मशायख इसकी मिसाल देते हैं पानी से कि आप जो है वो ठंडा पानी भी होता है, एक हमारी अम्मी कहती थी सुसुम पानी, नहीं आपने शायद ये वर्ड सुना सुसुम, यानी बिल्कुल माइल्ड जो हॉट होता था ना उसको सुसुम पानी कहते हैं, ठीक है, तो वो भी पानी होता है भाई, ठंडा भी पानी ही होता है, सुसुम भी पानी ही होता है और खौलता हुआ वो भी पानी ही होता है, इसी तरह से मोहब्बत का ये मामला है, ठीक है। अच्छा तो इन्होंने बाप से क्या कहा कि तुम, अच्छा, तो किनारा का शो करके इत्मीनान से अलहदा होकर अपने रब की इबादत करूंगा, क्योंकि यहां रहकर इसमें भी मुजाहमत होगी, यानी तुम लोग तो मुझे भी इबादत नहीं करने दे रहे हो ना, मैं यहां से जा रहा हूं। उम्मीद यानी यकीन है कि अपने रब की इबादत करके मैं महरूम नहीं हूंगा। असा अल्लाह अकूना बिदुआ रब्बी शकिया, अदउ रब्बी यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करूंगा, बंदगी करूंगा तुमसे अलग हो करके, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से जो मांगूंगा तो महरूम नहीं रहूंगा। अच्छा, जैसा बुतपरस्त अपने बातिल माबूदों की इबादत करके महरूम रहते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करके कोई महरूम नहीं रहता, गैर अल्लाह की इबादत करके महरूमी ही महरूमी है। जैसे हम दूसरों को खुश करने की कोशिशें करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं अल्लाह को नाराज करके, और मिलता हमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ना तो वो खुश होकर के देते हैं, और ना अगर वो खुश हो भी गए, अगर वो हमसे खुश हो भी गए तो क्या कर लेंगे वो हमारा, हमें कुछ नहीं दे सकते, उनके पास कुछ होगा तो हमें देंगे ना। लेकिन अल्लाह, उसको अगर हम खुश करने की कोशिश करें तो ये पहली बात तो हो ही नहीं सकता कि वो खुश ना हो, कि बंदा जो है वो अल्लाह को खुश करने की कोशिश कर रहा है और अल्लाह कह नहीं मैं नहीं होता तुमसे खुश, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बंदा जितनी कोशिश करेगा अल्लाह उतना उससे खुश होंगे, और फिर जब अल्लाह खुश होंगे तो फिर अल्लाह के पास ही तो सब कुछ है, तो अल्लाह तआला फिर देते भी है उसको। अल्लाह के साथ मोहब्बत में ना कोई महरूमी नहीं है। हमारे हजरत एक बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जिस बंदे ने इस दुनिया में अल्लाह से मुहब्बत करने की कोशिश करी होगी, कर नहीं पाया होगा, यानी जैसा मोहब्बत करने का हक है अल्लाह ताला से, वो तो नहीं समझ पाया इस बात को, वो तो नहीं कर पाया अल्लाह ताला से मोहब्बत, लेकिन कोशिश तो करी ना उसने, ठीक है ना, कि अल्लाह मुझे अपने महबूब में शामिल फरमा ले, मुझे ऐसा बना दे जैसा आप चाहते हैं, दुआएं करी अल्लाह ताला से, लेकिन बेचारा नफ्स और शैतान के सामने हार जाता था, मजबूर हो जाता था, गुनाह फिर भी करता रहता था, ठीक है। तो ऐसा शख्स जिसने दुनिया में अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की कोशिश करी होगी, ये हो ही नहीं सकता कि कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने दुश्मनों की सफ में खड़ा फरमा दे। दुश्मनों की सफ में खड़ा फरमाने का मतलब क्या? काफिर। अल्लाह ताला के दुश्मन कौन है? काफिर। अल्लाह ताला को कुफर और काफरी के साथ नफरत है, और जो शख्स भी कुफर की हालत में दुनिया से चला गया, मौत कुफर की हालत में, वो अल्लाह ताला की नफरत में शामिल हो गया, ठीक है। अब ये नहीं है कि नहीं वो तो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ने उसको बनाया था तो अल्लाह ताला को उससे मोहब्बत है, नहीं, मौत से पहले पहले, मौत से पहले पहले अल्लाह ताला को मोहब्बत है, ठीक है, ईमान वालों से ज्यादा है, जैसे अभी बात हो रही थी ना, ज्यादा कम होती है मोहब्बत, ईमान वालों से ज्यादा है, लेकिन काफिरों से भी है, इस दुनिया में काफिरों से भी है, जब भी तो अल्लाह ताला काफिरों का इंतजार करते रहते हैं भाई, मोहब्बत वाले का इंतजार किया जाता है ना, जिससे मोहब्बत हो उसका इंतजार किया जाता है, जिससे मोहब्बत ना हो उसकी तो शक्ल नहीं देखना चाहते, अंडर एनी सर्कमस्टेंस हम नफरत वाले की शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक है भाई, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हम शक्ल देखना चाहते हैं, अगरचे के कुछ कंडीशंस होती हैं कि अभी तौबा कर लो, ठीक हो जाओ, ताकि शक्ल दिखाने काबिल हो जाओ, ठीक है। तो अल्लाह ताला को काफिरों से भी इस दुनिया की हद तक मोहब्बत है, लेकिन जब मर गया कुफर की हालत में अब नहीं मोहब्बत है, ठीक है। तो इस वजह से जो काफिर होते हैं ना वो अल्लाह ताला के दुश्मन है, ठीक है, और कयामत के दिन उनको दुश्मनों की सफ में खड़ा किया जाएगा। लेकिन ऐसे शख्स को जिसने अल्लाह से मोहब्बत करने की कोशिश करी, नेक बनने की कोशिश करी, तो उसको नहीं किया जाएगा। जैसा बुतपरस्त अपने बातिल माबूदों की इबादत करके महरूम रहते हैं, दर्ज इस गुफ्तगू के बाद उनसे इस तरह अलहदा हुए कि मुल्क शाम की तरफ हिजरत करके चले गए। बस जब उन लोगों से और जिनकी वो लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते थे उनसे इस तरह अलहदा हो गए, यानी अब उन्होंने हिजरत कर ली, तो हमने उनको इसहाक जो कि बेटे थे और याकूब यानी पोते عطا فرمائے جو کہ رفاقت کے لیے ان کی بت پرست برادری سے بدر جہاں بہتر تھے، یعنی بہترین رفیق عطا فرما دیے دنیاوی اعتبار سے، بیٹا اور پھر اس کے بعد پوتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے دونوں کے دونوں، اور ہم نے ان دونوں میں ہر ایک کو نبی بنایا، یعنی دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے طرح طرح کے کمالات دے کر اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ یہ سب تعظیم اور ثنا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور اسحاق کے قبل اسماعیل انہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے۔ یعنی یہ تفسیراً حضرت نے چند باتیں لکھ دی ہیں کہ ان کا نام نیک اور بلند کیا، مطلب کہ یعنی ان نبیوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے عوام کے اندر زیادہ مقبولیت عطا فرما دی، ٹھیک ہے نا۔ نبی تو شیش علیہ السلام بھی تھے، نبی تو ادریس علیہ السلام بھی تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ادریس اور شیش علیہ السلام کا اتنا زیادہ لوگ ذکر نہیں کرتے۔ اسحاق اور یعقوب، ان کا عیسائی، یہودی، مسلمان سب جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کر دیا۔ اچھا پھر اتنا بھی بتا دیا کہ بھائی اسحاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس، سوری، یعقوب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسحاق علیہ السلام، استغفر اللہ، اسحاق علیہ السلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اسحاق ہی عطا فرمائے تھے، بلکہ اسحاق علیہ السلام سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور ان کے 1400 سال، جیسے کتابوں سے پتہ چلتا ہے روایات سے، 1414 سال کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم بات کا مسائل، سوری، خلاصہ تفسیر آج ہم نے مکمل کر لی۔ کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو چاہتے ہیں، ورنہ پھر آپ دوسری کلاس شروع۔ ٹھیک ہے۔